My dear brothers and sisters, while living in Africa,
अफ्रीका में रहते समय मैंने एल्डर विल्फोर्ड डब्ल्यू एंडरसन सतर के संतों की मदद के विषय में जो गरीबी में रहते थे के लिए सुझाव तलाशे थे। अद्भुत दृष्टिकोण के साथ उन्होंने मेरे साथ ये बांटा था, देने वाले और लेने वाले के बीच महान अंतर होता है। जितना अधिक लेने वाला अधिकार से लेने की क्षमता को विकसित करता है। यह नियम गिरजा के देखभाल प्रणाली के अंतर्गत है। जब सदस्य अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, वे पहले अपने परिवारों की ओर मुड़ते हैं, उसके बाद यदि जरूरत हो वे अपनी स्थायी जरूरतों के साथ स्थायी गिरजा मार्गदर्शकों से भी सहायता ले सकते हैं। परिवार सदस्य और स्थायी गिरजा मार्गदर्शक जिनको आवश्यकता होती है के सबसे करीब होते हैं, अक्सर सामान्य परिस्थितियों का सामना करते हैं और समझते हैं कि कैसे अच्छे से मदद दी जाए। उन्होंने देने वाले की निकटता के कारण पाने वाले जो इस तरीके अनुसार लेता है आभारी हैं और हकदार होने को कम महसूस करता है। मनोभाव यह है कि देने वाले और लेने वाले के बीच महान अंतर है। लेने वाला अधिक पाने के हकदार होने के योग्य विकसित होता है, आत्मिकता की गहराई से भी इस्तेमाल करता है। हमारे स्वर्गीय पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ देने वाले हैं, जिनका अधिक हम उनसे अपने आप को दूर करते हैं, हम अधिकारी होने का एहसास करते हैं। हम सोचना प्रारंभ करते हैं कि हम महिमा लायक और आशीषों के ऋणी हैं। हम अत्यधिक चारों ओर देखने के इच्छुक होते अन्याय पहचानते हैं और असंतुष्टता महसूस करते या तक अपमानित होते अनुचित होने के द्वारा हम अनुभव करते हैं, जबकि अनुचित होना हाथ से तुच्छ मन अत्यंत कष्टदायी हो सकता है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, यहाँ तक छोटी सी बेइंसाफी भी हावी होने लगती है, हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर के पास अभी इसी वक्त बातों को ठीक करने का दायित्व है। हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह से हमारी समीपता द्वारा बनाए विभिन्नता को मानसन की पुस्तिका में नेफी और उसके बड़े भाई लमान और लेमिल के बीच के कठोर अंतर को दर्शाता है। नेफी के पास परमेश्वर के भेदों को जानने की बड़ी अभिलाषा थी और उसने प्रभु को पुकारा और उसका हृदय द्रवित कर दिया था। दूसरी तरफ लमान और लेमिल ने परमेश्वर से दूरी रखी थी, वे उसे नहीं जानते थे। नेफी ने बिना शिकायत चुनौती भरे कार्य को स्वीकार किया, परंतु लमान और लेमुल बहुत सी बातों में असंतुष्ट थे। असंतोष धार्मिकता में बच्चों की शिकायत करने के समान होता है। धर्मशास्त्र ने उनका लेखा रखा था, वह असंतोष प्रकट किया क्योंकि जिसे परमेश्वर ने उनका बनाया था उसकी लीला वे नहीं जानते थे।
They seemed to view Nephi's blessings as wrongs committed against them. This is the scriptural equivalent of disgruntled entitlement. Nephi exercised faith in God to accomplish what he was asked to do. In contrast, Laman and Lemuel, being hard in their hearts,
नेफी ने परमेश्वर में विश्वास का अभ्यास कर जो उससे करने को कहा था वह पूरा किया। विपरीत में लमान और लेमिल अपने हृदय की कठोरता के कारण जैसा चाहिए था वैसे प्रभु की ओर नहीं देखा था। उन्हें महसूस हुआ कि प्रभु उस प्रश्नों के जवाब देने का दायित्व प्रदान करते थे जिसको उनके ढंग से नहीं दिया था। नहीं क्योंकि ऐसी बातों की जानकारी परमेश्वर हमको नहीं कराता, वह कहते हैं, परंतु उन्होंने यहाँ तक पूछने का भी प्रयत्न नहीं किया था। यही उत्साहपूर्ण संदेहवाद धार्मिकता के समान है, क्योंकि वे उदारकर्ता से दूर थे। लमान और लेमिल असंतुष्ट कलहप्रिय और विश्वसनीय हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि जीवन अनुचित और वे परमेश्वर की महिमा के अधिकारी हैं, विपरीत में क्योंकि वे परमेश्वर के निकट होता गया था। नेफी ने अवश्य ही उस जीवन को पहचाना जो कि यीशु मसीह के लिए बहुत ही अनुचित, भले ही पूर्णता से निर्दोष थे, उद्धारकर्ता ने अत्यधिक पीड़ा सही थी। अपने विचारों और अपने हृदय के अभिप्राय से हम यीशु मसीह के निकट होते हैं। जितना ज्यादा हम उसके मासूमता से सही पीड़ा की प्रशंसा करते हैं, उतना अधिक हम महिमा और क्षमादान के आभारी होते हैं और अधिक हम पश्चाताप करते और उसके समान बनते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह से सुनिश्चित फासला आवश्यक है, परंतु निर्देशन जिस पर हम बढ़ते हैं अत्यधिक कठिन है। परमेश्वर पश्चाताप करने वाले पापियों से अधिक प्रसन्न होता है जो उसके पास आने की कोशिश करते हैं, ना कि जो अपने नेक व्यक्तिगत दोष फारसी और पुराने शास्त्री नहीं जानते उतनी पश्चाताप करने की आवश्यकता करते। एक बच्चे के रूप में मैंने स्वेडिश क्रिसमस का गाना गाया था, जिसमें एक साधारण लेकिन प्रभावी शिक्षा दी थी। उद्धारकर्ता के नजदीक जाना हमारे बदलाव का कारण है। गीत कुछ इस तरह: When Christmas morning gleams, I want to go to the stable where God is in the nightmare hours already rest upon straw. How good thou wast to desire to come down to earth. Now I do not wish to waste my childhood days in sin anymore. Jesus, we need thee. Thou dear children, friend, I no longer to grieve thee sins again. When जब हम बेथलहम चरनी की ओर स्वयं से लाक्षणिक रूप से यात्रा करते हैं, जहां पर परमेश्वर रात के समय घास पर पहले से ही आराम कर रहा है, हम उद्धारकर्ता को प्रिय स्वर्गीय पिता का एक उपहार के रूप में अच्छे से पहचान सकते हैं, न कि उसकी आशीष और महिमा के अधिकारी होने के एहसास से हम उत्सुकता से परमेश्वर को आगे से दुखी न करने के कारण खत्म करने की कामना करते हैं। जो कुछ भी हमारा अभी का निर्देश हो गया हो या स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह से दूरी का, हमें उनकी ओर मोड़ने और उनके समीप आने का चुनाव कर सकते हैं। वह हमारी सहायता करेंगे, जैसे उद्धारकर्ता ने नेफाटियों के पुनर्स्थान का आचरण करने को कहता। और मेरे पिता ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं क्रूस पर उठाया जाऊं, जिससे सब मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। इसी कारण मैं ऊपर उठाया गया, इसलिए पिता की शक्ति के अनुसार मैं सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हमारे उद्धारकर्ता के पास जाना, हमें उसमें अपने विश्वास को बढ़ना, अनुबंधों को बनाना और पालन करना और अपने साथ पवित्र आत्मा को रखना चाहिए। हमें विश्वास में काम करना, हमें मिले आत्मिक निर्देश पर अमल करना चाहिए। यह सारे तत्व प्रभु भोज में एक साथ आते हैं। वास्तव में मैं एक बेहतरीन तरीका जानता हूँ परमेश्वर के पास जाने के लिए। निष्ठापूर्वक तैयारी कर और योग्यता से प्रभु भोज हर सप्ताह लेकर करना है। साउथ अफ्रीका में हमारे एक मित्र ने बांटा था कैसे उसने इसे पहचाना था। जब डायन एक नई प्रवृत्ति थी जोहानसबर्ग से बाहर, वह एक शाखा में जाती थी। एक रविवार वह जैसे कलीसिया के साथ बैठी थी। चैपल को इस तरह से बनाया गया था कि डीकन प्रभु भोज बांटते समय उसे देख नहीं पाए थे। डायना को निराशा हुई परंतु कुछ बोली नहीं। अन्य एक सदस्य ने इस पर ध्यान दिया और उसके बारे में शाखा अध्यक्ष सभा के बाद बताया। जैसे संडे स्कूल शुरू हुआ, डायना को एक खाली कक्षा में लाया गया। एक पुरोहित धारक अंदर आया। वह घुटनों पर होकर कुछ रोटी को आशीषित करना करता और उसे एक टुकड़ा देता है। वह उसे खाती है। वह फिर घुटनों पर होकर कुछ पानी की आशीषित कर उसे एक कप देता है। वह उसे पी लेती है। उसके साथ पश्चाताप। डायना को तुरंत उस सिलसिले में दो विचार आया। पहला, उस पुरोहित धारक ने सिर्फ यह मेरे लिए किया था और उस उद्धारकर्ता ने सिर्फ यह मेरे लिए किया था। डायना ने स्वर्गीय पिता के प्रेम को महसूस किया था। उसे पहचाना कि उद्धारकर्ता का बलिदान सिर्फ उसे की मदद कर उसके समीप होने का एहसास को न सिर्फ रविवार को परंतु प्रत्येक दिन रखने का हो। उसने जाना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कलीसिया में बैठकर प्रभु भोज ग्रहण करती है, हर रविवार को अनुबंधों को नवीनीकरण करती है। प्रभु भोज सहायता करता है और लगातार करता रहेगा। डायना ने ईश्वर प्रेम की समर्थ को जाना, प्रभु के साथ उसके जीवन को पहचाना और उद्धारकर्ता के और समीप आ गई। उद्धारकर्ता ने प्रभु भोज की पहचान अत्यावश्यक आत्मिक नींव के रूप में रखा था। उन्होंने कहा, और मैंने तुम्हें इन कामों को करने के लिए एक आज्ञा दी है, और अगर तुमने सदैव इन कामों को प्रभु भोज लेना, क्या तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने मेरी चट्टान पर अपना मकान बनाया है। और मैंने तुम्हें इन कामों को करने के लिए एक आज्ञा दी थी, और अगर तुमने सदैव इन कामों को प्रभु भोज किया तब धन्य हो, क्योंकि तुमने मेरी चट्टान पर अपना मकान बनाया। यीशु ने नहीं कहा था यदि वर्षा आए, बाढ़ आए और हवा के थपेड़े पड़े, परंतु जब कोई भी जीवन की चुनौतियों से बचा नहीं है, हम सभी को सुरक्षा की जरूरत है जो कि प्रभु भोज को लेने से आती है। उद्धारकर्ता के पुनर्स्थान के दिन दो शिष्य इस्माउस नामक गांव को जा रहे थे, बिना पहचाने कि जी उठा प्रभु उनके साथ यात्रा में जुड़े गया था। जैसे वे यात्रा कर रहे थे, उसने उन्हें धर्म शास्त्रों से शिक्षा दी। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने उसको अपने साथ भोजन पर आमंत्रित किया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उन्हें उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता है और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता है, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और तब वे प्रेरितों के साक्षी देते कि प्रभु सचमुच में जी उठा। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्योंकर पहचाना। प्रभु वो सच में हमारी मदद अपने उद्धारकर्ता को जानने में करता है। हमें यह उससे निर्देश पीड़ा का भी स्मरण करता है यदि जीवन का सच में साफ है और आप और हमारा कभी भी पुनर्स्थान नहीं होगा। आप और हम कभी भी परमेश्वर के सामने साफ सुथरे खड़े नहीं होंगे। इस आदर में मैं आभारी हूँ कि जीवन साफ सुथरा नहीं है। उसी समय मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, यीशु मसीह के प्रायश्चित के कारण आखिरकार बातों की अनंत योजना में कोई भी अन्याय नहीं होगा। वह सभी को जीवन के विषय में साफ नहीं है को सही किया जा सकता है। हमारे वर्तमान परिस्थिति शायद ना बदले, परंतु परमेश्वर की करुणा, कृपा और प्रेम के द्वारा हमें सब प्राप्त होगा जिसके हम हकदार हैं, कहीं अधिक जिसे कभी मोल ले सकें और कहीं अधिक जिसकी हम कभी आशा भी कर सकें। हम वह वादा करते हैं कि परमेश्वर उन सब की आंखों में सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पिछले बातें जाती रहेंगी, कोई बात नहीं। आप परमेश्वर से रिश्ते किस तरह का है, मैं आपको स्वर्ग पिता और यीशु मसीह के समीप आने को आमंत्रित करता हूँ। वास्तविकता में भलाई करने वाले सब कुछ अच्छा देने वाला है। मैं आपको हर सप्ताह प्रभु भोज सभा के प्रभु देने और उद्धारकर्ता के शरीर और लहू के पवित्र प्रतीक को ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं आपको परमेश्वर के नजदीकी को महसूस करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जैसे वह हमें करता है, जैसे पुराने शिष्यों की रोटी तोड़कर देता है, जैसे आप करते हैं। मैं वादा करता हूँ कि आप परमेश्वर के करीब होने का महसूस करेंगे। बचपना करते कि कुदरती प्रवृत्ति असुस्थता और उपहासपूर्ण संदेहवाद को दूर करेगा। उसकी भावुकता को स्वर्गीय पिता अपने पुत्र के उपहार के आभार और महान प्रेम के एहसास के द्वारा बदलेंगे। जैसे हम परमेश्वर के करीब आते हैं, यीशु मसीह के प्रायश्चित के समर्थन और सक्षम कर हमारे जीवन में लाएगा। और जैसे भी इस्माउस के रास्ते में शिष्यों के साथ चाहते हुए हम पाएंगे कि उद्धारकर्ता हमारे साथ हमेशा से था। मैं इसकी गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन।